राम हरे हरे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद जय गौर भक्त वृंदा, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा, निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा, निताय गौरंगा जय निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि, निताय गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है श्री कृष्ण बलराम मंदिर स्कान बना के। आज सायंकाल को श्री गौर महाप्रभु गौरंग महाप्रभु गौर कथा में, कल हमने ये चर्चा की थी कि चेतना महाप्रभु कौन है और उनके अवतार लेने के क्या कारण हैं। चेतना महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और भगवान श्री कृष्ण जो द्वापर युग में नंद नंदन कृष्ण आए थे, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता का संदेश देकर गए, भगवद गीता में शिक्षा देकर गए, भक्त बनो कृष्ण भक्त बनो, ये भगवान की शिक्षा है भगवद गीता की, कृष्ण भक्त बनो भाव मद भक्तो। और दूसरा भगवान ने शिक्षा दी यज्ञ करो, ये यज्ञ आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा, इष्ट काम दुख तीसरे अध्याय में। भगवान श्री कृष्ण गोलोक में सोचा कि मैं बोल के तो आया हूं मेरे भक्त बनो, मेरे भक्त बनने के लिए सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज, और यज्ञ करना बहुत मुश्किल है कलयुग के लोगों के लिए, इसलिए अब मैं वापस जाऊंगा और उनको सिखाऊंगा कि भक्त कैसे बना जाता है और यज्ञ कैसे किया जाता है। इसलिए वही भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन कृष्ण सचिनंदन सही नंद नंदन सही सचिनंदन बलराम होइलो निताई, वही नंद नंदन आज सचिनंदन बना है। कल अंग्रेजी भाषा में यही प्रवचन हुआ था, कुछ भक्तों ने कहा तो हम उसी को थोड़ा सा संक्षेप में पहले हिंदी भाषा में बोलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब भक्त कृष्ण भक्त बनाने के लिए और यज्ञ करने के लिए दोबारा जब आने का विचार किया तो भगवान भगवान के रूप में नहीं आए, भगवान भक्त के रूप में आए, भक्त के रूप में आए। चेतना महाप्रभु क्या है? भक्त रूपम, भक्त रूपम, भक्त के रूप में आए। तो कृष्ण भक्ति का सबसे, कृष्ण भक्ति का सबसे ऊंचा शिखर के ऊपर निपुण कौन है? श्रीमती राधिका। तो भगवान श्री कृष्ण और उनकी शक्ति हलादिनी शक्ति श्री राधा दोनों आपस में मिलके एक हो गए। तो इसलिए गौरंगा महाप्रभु युगल रूप है, युगल मतलब जोड़ी, राधा कृष्ण दोनों मिलके एक हो गए। लेकिन बन के आए थे भक्त तो राधा का बाहर, बाहर रंग राधा रानी का है, अंदर में भाव राधा रानी का है, लेकिन है कृष्ण, कृष्ण राधा भाव कांति अंगीकार करी। राधा का भाव मतलब भक्ति का भाव, कौन सी भक्ति? प्रेम भक्ति। कोई कैसा प्रेम? कृष्ण को कैसे आनंद दिया जाए? गोविंद आनंदनी राधे, राधा का उद्देश्य क्या है? गोविंद को आनंद देना। और बाहर रूप कैसा धारण किया कृष्ण ने? राधा ज्योति, राधा का रंग, राधा कांति, कांति का मतलब राधा का रंग। तो राधा रानी को बोलते हैं गोरंगी और चेतना महाप्रभु बन गए गोरंगा। फिर हमने कल कहा था चेतना महाप्रभु के आने के दो कारण है, बाह्य रंग कारण एक्सटर्नल कॉजेस और रीजंस और इंटरनल रीजंस अंतरंग कारण। तो रात हमने बाहर रंग कारण के ऊपर चर्चा की थी, बाहर रंग कारण में कलयुग के लोगों के उद्धार के लिए, बाहर रंग कारण है लोगों को भक्ति सिखाने के लिए और लोगों को यज्ञ कौन सा? संकीर्तन यज्ञ सिखाने के लिए। चेतना महाप्रभु का अवतार है कलयुग का, युग धर्म है हरिनाम संकीर्तन, और कृष्ण भक्त बनना है इसलिए भक्त बन के आके हरिनाम संकीर्तन सिखाया, ये बाह्यरंग कारण है। इसके ऊपर कल हमने चर्चा किया, युग धर्म हरिनाम संकीर्तन, इसके प्रचार के लिए सचिनंदन गौरंगा आए और भक्त बन के आए और अपने आचार से, अपने प्रैक्टिस से उन्होंने दुनिया को भक्ति करना सिखाया। आज हम चर्चा करेंगे अपना क्या इच्छा थी चेतना महाप्रभु के, कृष्ण के चेतना महाप्रभु बन के आने में उनका अपना इंटरनल रीजन क्या थे। इन इंटरनल रीजन को कल समझने के लिए हमने यहां से शुरू किया था, लौलुप्य या लोभ या लालच, ग्रीड। इस दुनिया में भी सबके सब में है तो ये कहां से आई? हाँ, इस दुनिया में सबको लोभ है कि नहीं है? तो ये लोभ आया कहां से? भगवान में अगर नहीं होगा तो हम में कहां से आएगा? हर एक चीज की अच्छाई भी है बुराई भी है, तो लोभ भगवान में है इसलिए लोभ हमारे में भी आया है। ये लोभ बहुत खराब है अगर संसार के लिए है, यही लोभ बहुत अच्छा है अगर भगवान की भक्ति के लिए, भगवत कथा श्रवण का लोभ हो, भगवान के नाम जपने का लोभ हो, भगवान के भक्तों का संग करने का लोभ हो, दिस ग्रीड इज वेरी गुड। नहीं तो लोभ नरक में चले जाने वाला है, संसार का लोभ नरक में ले जाएगा। लेकिन हरि कथा का लोभ हो, आज कथा सुनने जाना इसका लोभ हो, लोलुप्य हो दिल में बहुत, अधिक से अधिक मैं भगवान के भक्तों का संग करूं, तो ये लोभ अच्छा है। तो विष्णु, भगवान विष्णु नारायण को लोभ क्या हुआ? रात हमने कहा था भगवान के षड ऐश्वर्य, छह ऐश्वर्य हैं, सिक्स अपलेंसेज भगवान का। एक है वीर्य, वीर्य का मतलब भगवान बहुत शक्तिशाली है। हाँ, तो वीर्य काम कब दिखाता है? जब लड़ाई होती है तब पता लगता है ना कौन शक्तिशाली है। तो वीर्य का मतलब है वीर्य रस। तो भगवान विष्णु को वीर्य रस आस्वादन करने की इच्छा हुई। अब भगवान किसके, भगवान के साथ कौन लड़ेगा? तो भगवान के साथ लड़ने के लिए भी कोई भगवान का अपना ही परिकर आएगा तब ना। तो भगवान की जैसे जब इच्छा होती है ना, तो उसको बोलते हैं भगवान की संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति, भगवान ने संकल्प किया उसको बोलते हैं भगवान की संकल्प शक्ति। वो संकल्प शक्ति एकदम योग माया को ऐसा ऐसा वातावरण बनाता है, ऐसा अरेंजमेंट करती है कि भगवान की इच्छा पूरी हो, भगवान का संकल्प पूरा हो। तो योग माया ने कौन सा काम किया? चार कुमारों को वैकुंठ के दरवाजे पे भेजा और जय वाला उदय ने उनको रोका और ब्राह्मणों ने उसको शराप दिया और तीन बार वो असुर बन के आए। तो पहली बार क्या असुर बन के आए? हिरण्यकशिपु और हिरण्यकश्यप। दोबारा रावण और कुंभकर्ण। तीसरी बार शिशुपाल और दंडवकर। तो भगवान ने उन तीनों अपने भक्तों को असुर बनने के बाद भी छोड़ा नहीं, उनके उद्धार के लिए आए। ये भगवान की महिमा है। तो हिरण्यकशिपु के उद्धार के लिए जो भगवान नरसिंह देव प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, तो कल हमने ये कथा की थी कि उग्र नरसिंह को शांत करने के लिए न ब्रह्मा कर पाया, न शंकर जी कर पाए, न लक्ष्मी कर पाई। तो प्रहलाद ने प्रणाम किया, नरसिंह देव ने गोद में बिठाया, चाटा, बड़ा आनंद से स्नेह किया और देखा कि बड़ा मुझे आनंद मिल रहा है। नरसिंह देव बहुत खुश हो रहे थे, सुख मिल रहा था, लेकिन प्रहलाद उनसे ज्यादा सुखी हो रहे थे। बेटा, बच्चा माता पिता की गोद में ज्यादा सुख उसको मिलता है, इसलिए उतरना नहीं चाहता। माता पिता को थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, उठाता है, लेकिन फिर छोड़ देता है, लेकिन बच्चे को और ज्यादा सुख मिलता है। तो नरसिंह देव के हृदय में एक लोभ पैदा हुआ कि मैं भी छोटा बच्चा बनके अपनी माता पिता की गोद में खेलूं। इसलिए नरसिंह देव के बाद भगवान जब अवतार लेने के लिए आए तो अपने भक्तों को माता पिता बनाया। और दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण जब बन के आए जय विजय, तो भगवान श्री रामचंद्र बन के आए। तब भगवान ने अपनी माता यशो कौशल्या के गोद में खेला, एक एक में तीन तीन माताओं के गोद में खेला। यशोदा और सॉरी कौशल्या, सुमित्रा और केकई, तीन तीन माताओं का और दशरथ की गोद में खेले। भगवान ने कौन सा रस आस्वादन किया? वात्सल्य रस का, कि कैसे माता पिता प्रेम करते हैं बालक से। ये भगवान रामचंद्र ने बड़ा आनंद लिया, ये उनकी इच्छा थी। लेकिन रामचंद्र के अवतार में भगवान रामचंद्र के साथ मित्र तो बने, सखा तो बने, फ्रेंड तो बने। कौन फ्रेंड बना पहला? निषाद राज गुहा। दूसरा कौन फ्रेंड बना? सुग्रीव। हाँ, मौंकी राज सुग्रीव। तीसरा कौन फ्रेंड बना? असुरराज विभीषण। तीनों फ्रेंड भगवान राम के बड़े अद्भुत हैं। ये भगवान के सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, राम जी के सामने, राम जी से जाके गले मिल लें या साथ में प्रसाद खा लें या घूम लें, इसमें ये हिम्मत नहीं है। तो ये फ्रेंडशिप कैसी है? फ्रेंडशिप इन एव एंड रिवरेंस, बड़ी आदर की। मित्रता है लेकिन बड़ा आदर है। कहा जाता है कि ये फ्रेंड है, मित्र है, लेकिन वो भगवान के चरण छू जाए, भगवान को पांव लग जाएगा तो अपने को कहने अपराध हो गया। सो राम जी के मन में लालच पैदा हुई, आई मस्ट हैव फ्रेंड्स, ऐसे मेरा मित्र होने चाहिए। at equality. Vishramba. Vishramba means friendship at equality. मुझे ऐसा मित्र चाहिए. और रामचंद्र के मन में एक और इच्छा उत्पन्न हुई, माधुर्य प्रेम. सीता और राम का बहुत घनिष्ठ प्रेम है और प्रेम में सबसे ज्यादा सुख मिलता है जब थोड़ी देर के लिए प्रेम और प्रेमी जुदा होते हैं. उसको बोलते हैं विप्रलंबा. विप्रलंबा लव इन सेपरेशन. तो सीता और राम सेपरेट तो हुए. एक साल के लिए तो सीता जी रावण के संग रावण ले गया और फिर सीता जी को राम जी ने स्वयं ने अलग कर दिया, परित्याग कर दिया. लेकिन दोनों बार सेपरेशन तो हुई लेकिन फोर्सफुल हुई, प्रेम वाला नहीं, उसमें प्रेम का रस तो नहीं मिला. तो जो विप्रलंब भाव प्रेम में होता है, जो प्रेम की बहुत ऊपर का भाव माना जाता है, वो राम सीताराम की लीला में नहीं है. सीताराम लीला में सीता और राम का प्रेम तो है लेकिन जुदाई जबरदस्ती हुई. रावण ले गया या फिर धोबी के कहने के ऊपर सीता जी को त्याग कर दिया राम जी, दोनों फोर्सफुल सेपरेशन है. तो इसमें प्रेम का जो घाढ़ गाढ़ भाव है, जो जो कंडेंस प्रेम है, वो नहीं पैदा हुआ. तो राम अवतार में ये दो और लोभ रह गए. अब शिशुपाल और दंडवक्र को उद्धार करने के लिए भगवान क्या बन के आए? श्री कृष्ण. अब श्री कृष्ण चंद्र भगवान आए तो पहली उनकी इच्छा क्या थी? मेरे फ्रेंड होने चाहिए. कैसे? इक्वल. इक्वल नाचें गाएं कूदें, मेरे कंधे के ऊपर चढ़े, मैं उनके कंधे के ऊपर चढ़ूं. तो कृष्ण के बाल लीलाओं में कृष्ण के जो अष्ट सखा है, अष्ट सखा है और फिर अन्य और सखा है, स्तोक कृष्ण है, श्रीधामा है, मधुमंगल है, ये तो छीन के कृष्ण से खाना खाते हैं. और पहले देखो तो टेस्ट करो, मेरी मां ने खाया तुम खा के देखो, नहीं नहीं तुम मत खाओ मैं खाता हूं, छीन के खाते हैं. और एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ते हैं, कृष्ण के कंधे के ऊपर श्रीधामा चढ़ता है. खेलते खेलते श्रीधामा जीत गया, कृष्ण हार गया, तो कृष्ण घोड़ा बनेगा और श्रीधामा कंधे के ऊपर चढ़ेगा. तो यहां ये मित्रता कैसी है, फ्रेंडशिप कैसी है? विश्रम्बन इक्वलिटी के ऊपर बराबर. इस फ्रेंडशिप में सुख मिला और फिर भगवान श्री कृष्ण के प्रेम वृंदावन में माधुर्य प्रेम भगवान का कैसा रहा गोपियों के संग में? प्रेम में एक होता है ऐश्वर्य, एक होता है माधुर्य. ऐश्वर्य प्रेम द्वारका के रानियों के साथ कृष्ण का, जिसमें द्वारकाधीश मान के पति की सेवा करती है, प्रेम करती है, लेकिन प्रेम कैसा है? ऐश्वर्य कृष्ण का. वृंदावन में माधुर्य प्रेम है. उस प्रेम में कृष्ण और गोपियों का जुदा होना हुआ 100 साल के लिए, 100 ईयर सेपरेशन. 100 ईयर्स राधा कृष्ण की सेपरेशन हुई. लेकिन उस सेपरेशन में प्रेम और गहरा हुआ. लव बिकेम मोर कंडेंस. महाभाव, महाभाव स्वरूपेणी राधे. तो कृष्ण अवतार में तीन और लोभ कृष्ण को पैदा हुए. कृष्ण डेवलप थ्री ग्रीड्स. तीन कृष्ण अवतार में जो लोभ हुए उसको पूरा करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए. तो आइए आज यहां से पढ़ते हैं वो तीन लोभ क्या हैं जो कृष्ण अवतार में पूरे नहीं हुए. और ये श्लोक किसने लिखा है? ये श्लोक लिखा है स्वरूप दामोदर ने, जो ललिता है, जो ललिता सखी है, जो राधा के संग में ब्रजलीला में रहती है, जो गौरंगा महाप्रभु के बिल्कुल निकट के संग में जो कुछ हमारे को चैतन्य चरितामृत से मिला है, वो सब स्वरूप दामोदर की लिखी हुई डायरी है. स्वरूप दामोदर लिखते हैं कृष्ण को तीन लोभ हो गए.
थ्री ग्रीक्स, श्री राधाया, श्री राधाया प्रण्य महिमा कीदृशो वान येवा। पहला क्या है? श्री राधाया प्रण्य महिमा, श्री राधाया प्रण्य महिमा। प्रण्य किसको बोलते हैं? प्रण्य कहते हैं प्रेम का ऊपर का स्तर। प्रेम का कितना ऊपर का स्तर? प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, महाभाव, ये प्रेम के स्तर हैं। तो प्रणय जो है, प्रणय में प्रेमी और प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका दोनों में कोई अंतर नहीं रहता है। तो ये प्रणय राधा रानी है क्या? जैसे राधा रानी है क्या? कृष्णेर प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति। कृष्णेर प्रणय विकृति मतलब कृष्ण के प्रेम में विकृति आती है, ट्रांसफॉर्मेशन आती है, तो राधा कृष्ण के अंदर से प्रकट होती है। She comes out of Krishna's body. When Krishna is in a mood of enjoyment, loving, transcendental, conjugal melodies, उस वक्त कृष्ण के अंदर से ही राधा रानी प्रकट होती है। विकृति किसको बोलते हैं? जैसे दूध से दही बोलता है, विकृति है। दूध से दही बनना विकृति है। दूध की विकार क्या है? दही। ऐसे कृष्ण से राधा बनी, और राधा क्या है? कृष्ण की शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति है। तो अब कृष्ण प्रणय का, अब राधा का क्या? पहला कृष्ण का लोभ क्या है? ये ललित माधव नाटक में लिखा है, रूप गोस्वामी ने इसको। कृष्ण लीला के तीन डिजायर रिमेन अनफुल्ड। पहली क्या है? व्हाट इज राधा रानीज लव? राधा प्रणयर महिमा। राधा रानी जो प्रेम करती है वो कैसा है, ये कृष्ण को समझ में नहीं आया। कृष्ण को राधा रानी के प्रेम को समझने के लिए इतनी लालच हो गई, लोभ हो गया। राधा कृष्ण से प्रेम करती है, तो वो प्रेम जो राधा के हृदय में है उसको कृष्ण समझना चाह रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू, he developed the greed to know what is the Radharani's love. दूसरी greed क्या है? शब्द क्या लिखे हैं स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने? स्वाद्यो येनाद्भूत माधुरीमा की दृशो वा मदीय। मदीय मतलब मेरी अपनी। अब कृष्ण क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्या है डिजायर? व्हाट इज माय रूप माधुरी? रूप माधुरी का अर्थ क्या है? कृष्ण कहते इतना राधा जी मुझे प्रेम करती है तो मैं सुंदर हूं तब करती है ना, तो मैं कितना सुंदर हूं ये मैं देखना चाहता हूं। ऐसे लिखा है कि एक बार कृष्ण जाते हुए एक उनके घर में लगा हुआ जो सुंदर सा स्तंभ था, खंभा था, ऐसे जैसे खंभा, वो इतना चमक रहा था, उसमें कृष्ण ने अपने रूप को देखा और देखते हुए कहते अगर मैं राधा रानी होता तो इसी के साथ विवाह करता। दैट्स व्हाट कृष्ण इज सेइंग। इफ आई वुड हैव बीन राधा, तो ये जो सामने दिख रहा है ना, ये कितना सुंदर, इसके साथ विवाह कर लेता। दैट्स व्हाट कृष्ण इज थिंकिंग, हाउ मच ब्यूटीफुल आई एम आई डोंट नो। और ये तो हम जानते हैं कि सब अवतारों में नारायण तक, श्री रामचंद्र तक जो गुण हैं उनसे सिर्फ चार चीजें हैं जो किसी और में नहीं है, सिर्फ कृष्ण में है। कृष्ण में चार चीजें हैं जो और किसी अवतार में नहीं है, नारायण तक नहीं है, रामचंद्र तक नहीं है। वो क्या है चार चीजें? एक है वेणु माधुरी, बांसुरी किसी ने नहीं बजाई है आज तक, ये बांसुरी सिर्फ कृष्ण का विशेषता है और सिर्फ वृंदावन में, मथुरा में नहीं ले गए, द्वारका में नहीं है, ओनली इन वृंदावन। इसको कहते हैं वेणु माधुरी। दूसरा है रूप माधुरी। वो रूप माधुरी ये है कि मैं कितना सुंदर हूं मुझे मालूम नहीं है, तो मैं कैसे देखूं? आपको अपनी सुंदरता देखनी होती है तो क्या करते हो? मिरर में देखते हो ना, मिरर में देखेंगे कैसे लगते हैं। तो अब कृष्ण के लिए राधा रानी मिरर है, उसके अंदर देखना चाहते हैं मैं कैसा लग रहा हूं। आप अपनी सुंदरता तो कोई नहीं देख सकता है ना, मिरर में ही देखनी पड़ती है ना, अपना मुंह देखना है तो मिरर में। और लोग अपने को इतना सुंदर मानते हैं इसलिए मिरर अपने साथ रखते हैं हमेशा, जब चाहे तब कैसा है मैं। तो कृष्ण कितना सुंदर है, रूप माधुरी। तीसरा कृष्ण की विशेषता है लीला माधुरी। जैसी श्री कृष्ण की लीला है ब्रज की, उसमें जो मधुर रस है ऐसा और किसी अवतार में नहीं होता, लीला माधुरी। और चौथा है प्रेम माधुरी। ये चार चीजें और किसी अवतार में नहीं है। स्वयं श्री कृष्ण में, वृंदावन में सिर्फ ये चार चीजें हैं, मथुरा में कम हो जाती हैं दो, और द्वारका जाते हुए और कम हो जाती हैं। 16 कला द्वार वृंदावन में है तो मथुरा 14 है तो 12 द्वारका है, तो द्वारका में ऐश्वर्य भाव हो जाएगा, वो भाव ने बहुत दूरी हो जाएगी। आपको हमने बताया द्वारका नाम कैसे पड़ा, द्वारका द्वारका का। जब कृष्ण मथुरा से चले गए द्वारका रात रात में, क्यों चले गए? यदुवंशियों को वहां सुरक्षित रखना था। एक तरफ से काल यवन आया, एक तरफ से जरासंध आया 18वीं बार, और इस बार ब्राह्मणों को साथ ले आया। अगर मैंने नहीं जीता तो मैं आप लोगों को मार दूंगा, तो भगवान ने कहा ब्राह्मणों को मारना नहीं है, मैं ब्राह्मणों की रक्षा के लिए आया हूं। सुर धेनु विप्र हित इन तीनों के लिए मैं अवतार लिया है। तो भगवान वहां से रणछोड़ होकर भाग गए। तो द्वारका जाते ही भगवान ने सोचा मथुरा तक मैं था तो वृंदावन पास में था, गोपियों को संदेश पहुंचता था क्या? मेरे श्री विग्रह की जमुना के ऊपर से हवा गुजरती थी तभी गोपियों को मिलती होगी, वृंदावन और मथुरा में दूरी नहीं है। अब द्वारका तो हजारों किलोमीटर दूर है, अब तो गोपियों को मेरा समाचार कैसे मिलेगा? तो भगवान ने योग माया के द्वारा सारे गोपियों को जहां भगवान रह रहे थे जाके, उसका नाम था आनर्त देश। पुराना नाम जो द्वारका है ना वो है आनर्त देश, भागवत में लिखा है आनर्तान। जब आनर्त में पहुंचे श्री कृष्ण वापस, आनर्त नाम है उसका, वो भी सूर्यवंश के महाराज ने उस धरती के ऊपर वैकुंठ से उतना धरती का टुकड़ा नीचे लाए हैं द्वारका का 100 योजन। आनर्त देश एक दूसरा भी नाम है इसका द्वारका का। तो जब गोपियों के लिए बहुत बड़ा महल बनाया, रात रात में योग माया गोपियों को वहां ले गई, सुबह गोपियां उठी तो इतने बड़े महल में दरवाजा कहां है, दरवाजा कहां है, दरवाजा कहां है, द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। दरवाजे को भाषा में कहते द्वार, जैसे हरिद्वार, तो द्वार कहां, द्वार कहां, द्वार कहां। तो उस जगह का नाम हो गया द्वारका, 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 द्वार ऐसे नाम द्वारका। तो द्वारका का नाम द्वारका गोपियों ने दिया है, इससे पहले उसका नाम आनर्त देश था, एक और भी उसका नाम है जिस राजा ने उस धरती के ऊपर इस धरती लाए थे उसके नाम से वो द्वारका है। तो बात कर रहे थे द्वारका में ये सब चीजें कृष्ण की माधुरी की नहीं है,
तो पहला लोभ कृष्ण का क्या है, राधा का प्रेम क्या है मैं जानना चाहता हूं। दूसरा लोभ कृष्ण का क्या है, मेरी सुंदरता क्या है मैं देखना चाहता हूं। और तीसरा लोभ क्या है, सौख्यम चास्या मद अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात। तीसरा क्या है, द थर्ड डिजायर इज व्हाट टाइप ऑफ प्लेजर हैप्पीनेस दस राधा रानी ड्राइव बाय रेलिशिंग माय ब्यूटी एंड हाउ कैन आई रेलिश इट। मेरी सुंदरता के ऊपर जो राधा रानी मदमस्त है उसको क्या सुख मिलता है, वो मैं अनुभव करना चाहता हूं। तो तीन डिजायर कौन सी कृष्ण की अनफुलफिल्ड है, थ्री डिजायर्स विच वर अनफुलफिल्ड इन कृष्ण अवतार आर राधाज लव, कृष्णज ब्यूटी एंड व्हाट राधा रानी रेलिशेस व्हेन व्हाट शी व्हाट टाइप ऑफ प्लेजर्स और हैप्पीनेस डज राधा रानी ड्राइव, कृष्ण वॉन्टेड टू रेलिश दैट। एंड देन स्वरूप दामोदर राइट्स तद भावार्यः समजनी सची गर्भ सिंधो हरि इंदो। सची गर्भ, सची माता के यहां कैसे आए, हरि इंदो, इंदु कहते चंद्रमा को, जैसे समुद्र से चंद्रमा निकला ऐसे, जैसे समुद्र से चंद्रमा कहां से निकला है, समुद्र से, इसलिए कभी कभी चंद्रकामा को कभी कोई कहता है ना राधा कृष्ण के अंदर बात होती है तेरा मुख चंद्र है, कहते हैं ना कभी तेरा मुख चंद्र है, तो राधा रानी कहते हैं मत कहो मुझे मुख चंद्र, चंद्र विश्व का बंधु है, कहां से निकला है समुद्र से मिलने निकला है, समुद्र में पहले क्या निकला था पॉइजन, तो विश्व का बंधु है मेरा मुख चंद्रमा मत कहो, इसमें मेरा मुख का जो है वो मान नहीं बढ़ रहा है अपमान हो रहा है, ये विश्व बंधु नहीं है, मुख चंद्र बहुत बड़ा सिमली दी जाती है लविंग पोएट्री में, लेकिन चंद्रमा कोटि चंद्र सो शीतल नित्यानंद, कोटि चंद्र, कोटि मीन्स 100 मिलियन और 10 मिलियन, 10 मिलियन चंद्रमा की जितनी सुंदरता और शीतलता है वो तो नित्यानंद प्रभु अकेले की है। कोटि चंद्र सुशीतल बाहु को क्या है, बाहुजन नित्यानंद क्या क्या है ये भजन, बहु कोटि सुशीतल उससे पहले क्या है, नित्य पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल शीतल नित्य चंपा, तो भाभी श्री कृष्ण की क्या बात करनी चंद्र है, इसलिए कल बात इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कल ये चर्चा करेंगे ये तो क्यों अवतार लिया, कैसे अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु ने, कल डिस्कस करेंगे गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु ने कैसे अवतार लिया। तब कहते हैं जब गौर चंद्र का प्रकट हुआ तो ये प्राकृतिक चंद्रमा जो था उसको ग्रहण लग गया, उसने मुंह छिपा लिया कि अभी असली चंद्रमा आया है तो मेरी कौन सी वैल्यू है, इसलिए उस दिन ग्रहण लगा हुआ था, क्या हुआ था चंद्र, जिस दिन चैतन्य महाप्रभु पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ, प्रकट कब हुए पूर्णिमा को, पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए, तो पूर्णिमा का चंद्र कितना चमकता है, उसने देखा असली चंद्रमा गौर चंद्र आ गया। हाँ कोटि सुशीतल तो इनका नित्यानंद है, तो ये तो सहस्र कोटि सुशीतल ये चंद्रमा आ गया, अब मेरी क्या वैल्यू है, तो उन्होंने आंखें अपनी बंद दी, अपने आप को ढक दिया, किससे ढक दिया, ग्रहण लग गया। उस दिन क्या था, चांद ग्रहण था, महाप्रभु के प्रकट के समय चंद ग्रहण का, हाँ लूनर एक्स, लूनर नहीं लूनर एक्स एक्लिप्स था, और वो क्यों हुआ, दूसरा उसका कारण क्या है,
कि अभी भी भारत संस्कृति को लोग जब इक्लिप्स होता है, जब ग्रहण होता है, तो नदी में नहाने जाते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और दान करते हैं उदारता से। या मॉरिशस में करते हैं लोग ग्रहण के दिन क्या करते हैं? ग्रहण के दिन पुराने जमाने में हम सब घर का पानी गिराते थे, कुछ खाना भोजन पहले बच्चों के लिए बना रखते थे। ग्रहण के समय में कुछ नहीं पकता था, ग्रहण खुलने से पहले ताजा पानी भर के आते थे कुएं से, नदी से, फिर नहाते थे, नहा के पानी भर के लाके फिर पकाते थे घर में। लेकिन जब नहा के वापस आते थे तो बहुत से हजारों लोग रास्ते में बैठते मांगने वाले दान देते थे, अन्नदान करते थे। ये पुराने जमाने में ग्रहण के समय ये हमने देखा है। तो हम कहां, एक बार सूरत में ग्रहण के ऊपर प्रवचन कर रहे थे, उसने बोला क्या फर्क पड़ता है ग्रहण का आदमी अगर ऐसे नहीं करेगा। तो हमने कहा ग्रहण का ऐसे नहीं करेगा तो आप आदमी बदमाश बनेगा, बेईमान बनेगा, टेररिस्ट बनेगा, और आप लोग सब हुए हो तो अब ग्रहण का करने की क्या फर्क पड़ता है? यू आर नॉट, यू आर डूइंग इट, यू आर ऑलरेडी व्हाट यू हैव, इफ नॉट डूइंग यू विल बिकम व्हाट यू आर राइट नाउ। तो ग्रहण को ऑब्जर्व न करने से आदमी को क्या होगा? बदमाश होगा, बेईमान होगा। तो वो तो आप पहले से हो, नहीं करोगे क्या फर्क पड़ेगा आपको? ये तो अच्छा आदमी होता है वो ग्रहण के सूचक में कुछ नहीं करना चाहता। तो अभी दुनिया में वही कुछ सब कुछ हो रहा है तो ग्रहण का कोई पूजा पाठ करता ही नहीं है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो जन्म से पहले ही जिस काम से लिए आए थे उसका प्रबंध करके आए थे। ग्रहण है, गंगा जी का तट है, मिलियंस ऑफ पीपल जो है, लाखों कोटि लोग वो हरिबोल कर रहे हैं और नहा रहे हैं और दान दे रहे हैं। तो महाप्रभु कैसे प्रकट हुए उसके ऊपर चर्चा कल करेंगे। तो अब ये तीन ट्रांसलेशन, स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैज स्पोकन दिस वर्स एंड इट इज कोटेड बाय रूप गोस्वामी इन हिज ललित माधव। रूप गोस्वामी ने ड्रामा लिख रहे थे, ड्रामा लिखने जा रहे थे, ड्रामा उनको लिखना था राधा कृष्ण की लीला का और द्वारका में सत्यभामा कृष्ण की लीला का। और वो वृंदावन से मिलने जा रहे थे चैतन्य महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में। एक गांव है सत्यभामापुर, वहां जब रात को रुके तो सत्यभामा स्वप्न में आके बोलने लगी कि मेरा, राधारानी ने बोला मेरा ड्रामा अलग लिखो, पुस्तक राधारानी का अलग लिखो। जब चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे रूप गोस्वामी जगन्नाथपुरी में, तो चैतन्य महाप्रभु ने भी यही कहा कि आप वृंदावन लीला राधा माधव अलग लिखो और कृष्ण और सत्यभामा और द्वारका लीला अलग लिखो। तो उन्होंने फिर दो ड्रामा अलग लिखे, ललित माधव और विगत माधव। ये रूप गोस्वामी की दो बहुत बड़े कविता में ड्रामा है। और चैतन्य चैतन्य में इसका इतना वर्णन है कि रामानंद राय और बहुत बहुत बड़े विद्वानों के सामने चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि आप अपने इस ड्रामे की जो कविता है उसका आधार क्या है, इसको एक्सप्लेन करो। तो वो रूप गोस्वामी को वहां महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए। तो उसमें रूप गोस्वामी ने श्लोक को लिखा है, इन कृष्ण लीला थ्री डिजायर्स रिमेन अनफुलफिल्ड। फर्स्ट कृष्ण वांटेड टू नो व्हाट इज राधारानीज लव। नेक्स्ट ही डिजायर टू नो व्हाट इज माय रूप माधुरी, माय एक्सीलेंट ब्यूटी एंड व्हाट राधारानी रेलिशेस, हाउ कैन आई रेलिश इट। एंड द थर्ड डिजायर, व्हाट टाइप ऑफ प्लेजर और हैप्पीनेस डज राधारानी ड्राइव बाय रेलिशिंग माय ब्यूटी एंड हाउ कैन आई रेलिश इट। दीज थ्री डिजायर्स डेवलप्ड इन द सुप्रीम लॉर्ड श्री कृष्ण। Therefore, Sachi Garbha, Sindhau Hari Indau, he appeared from the womb of Sachi Mata, that is Gauranga Mahaprabhu. ये चेतना महाप्रभु के अंतरांग कारण है अवतार के। तीन इच्छाएं कृष्ण लीला में उनकी रह गई थी, इनको पूरे करने के लिए आए। तो चेतना महाप्रभु राधा के भाव में आए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। Krishna, loving Krishna. Krishna अपने आप को प्रेम कर रहा है कृष्ण से और कृष्ण के लिए रो रहा है. कृष्ण इज क्राइंग फॉर कृष्ण इन राधा मूड. वाय चेतन महाप्रभु स्टेड इन जगन्नाथपुरी. जगन्नाथ कौन है? कृष्ण. जगन्नाथ इज कृष्ण. दिस कृष्ण इज क्राइंग फॉर राधा. जगन्नाथ कृष्ण है लेकिन काय के लिए आंखें इतनी बड़ी हो गई है. डायलेटेड वाइड आईज हैंड्स एंटर्ड इनटू द बॉडी. वाय? राधा की जुदाई में. इन सेपरेशन ऑफ राधा कृष्ण का जो भाव है वो जगन्नाथ है. और कृष्ण की सेपरेशन में जो राधा रानी का भाव है वो चैतन्य महाप्रभु है. इज इट क्लियर? तो एक कृष्ण है जो राधा को ढूंढ रहा है, एक राधा का है जो कृष्ण को ढूंढ रही है. इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को देखते हैं तो राधा और कृष्ण का मिलन है. दिस इज राधा और कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं. इसलिए चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे क्योंकि जगन्नाथ का रूप राधा के विरह का रूप है. जगन्नाथ रथ यात्रा यहां आप करते हैं उसके बहुत कारण है. कैसे हुई, कब हुई, कुरुक्षेत्र का भी कारण है उसका. जहां गोपियां और कृष्ण मिले थे, गोपियां रथ को खींच के वृंदावन लाना चाह रही थी. द्वारका में भी रोहिणी से पूछ रही थी भगवान श्री कृष्ण की रानियां कि सोता है हमारे यहां कृष्ण द्वारका के महलों में, सोए सोए रात को गोपी गोपी करता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. रानियां बोलती हैं सोता हमारे यहां. रुक्मणी बोलती, सत्यभामा बोलती, हाँ बोलती है, और शैबिया बोलती है, लक्ष्मणा बोलती है, कालिंदी बोलती है, जामवती बोलती है, इधर हमारे पास है. लेकिन सोए सोए रात को गोपी गोपी राधा राधा करता है. तो ये क्या है? आज डिस्कशन ये कर रहे थे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एनवी नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, कॉम्पिटिशन नहीं है, कोऑपरेशन है, हारमोनी है. अगर इधर आपके यहां पति सोया हुआ किसी और का रात को नाम ले तो जूते पड़ेंगे बहुत सारे. लेकिन वहां रानियां रोहिणी मां के पास जाके कहती है, हे मां रोहिणी, ये रात को गोपी राधा कहती है, हम समझते हैं कि आपने इनका देखा है वृंदावन लीला, हमको जरा बताइए तो कृष्ण और राधा और गोपियों से क्या इनका प्रेम था. वो उसको जानना चाह रही है, लड़ाई नहीं कर रही. रोहिणी ने कहा मैं बताऊंगी आपको, लेकिन जैसे मैं ये कथा करूंगी कृष्ण और बलराम भागते हुए आ जाएंगे, और उन्होंने ये सुन ली तो ये द्वारका से अभी भाग के वृंदावन चले जाएंगे, उसको अंदर मत आने देना. बाहर दरवाजे पे खड़ा कर दिया सुभद्रा को. सुभद्रा ऐसे खड़ी दरवाजे पे. रोहिणी कथा शुरू किया कृष्ण और गोपियों के प्रेम की. कृष्ण बलराम भागते हुए आ गए द्वारका में. सुभद्रा बोलिए अंदर मत जाओ, मां ने मना किया है. उसे कान दे के सुन रहे हैं. जैसे ही गोपियों के प्रेम की कथा सुनी, खड़े खड़े कृष्ण बलराम और सुभद्रा ऐसे हो गए, आंखें खुली रह गई, हाथ अंदर चले गए. उस प्रेम के विरह में, राधा के गोपियों के ब्रज के विरह में ये रूप हो गया. और नारद जी ने इस रूप को देखा था वहां भटकते हुए. और तीसरा कारण है, राधा और कृष्ण गोपियों की जुदाई 100 साल तक रही, 100 ईयर्स। ये श्रीधामा का और राधा रानी का दोनों बहन भाई हैं, एक दूसरे को परस्पर कर्ष था, श्राप था गोलोक में कि 100 साल के लिए सेपरेशन होगी। तो 100 साल के बाद इनका मिलन हुआ है, गर्ग संहिता में इसका मिलन हुआ है बिंदु सरोवर पे, सिद्ध आश्रम में वहां लिखा है। सिद्ध आश्रम में एक बिंदु सरोवर है, जो उसमें नहाता है वो कृष्ण से कभी अलग नहीं होता। राधा रानी ने कहा दोबारा पढ़ो, बोला बिंदु सरोवर में जो नहाएगा कृष्ण को एकदम मिलेगा, कभी जुदा नहीं। बोला चलो बिंदु सरोवर। राधा रानी सारे गोपियों के लेकर वृंदावन से बिंदु सरोवर आई, सिद्ध आश्रम, और यहां से कृष्ण और उनकी रानियां और सारे यदुवंशी बिंदु सरोवर आए। और गोपियां डंडा उठा के खड़ी हैं, कोई जा नहीं सकता, यदुवंशी इतने शक्तिशाली, गोपियों ने रोक दिया। तब सबने जाके पूछा कौन ऐसा नहा रहा है कि चारों ओर से तालाब के पार बाहर डंडे उठा के लोग खड़े। श्री कृष्ण ने कहा ये वृषभानु नंदनी राधा नहा रही है। और राधा की महिमा कृष्ण ने गाई, सत्यभामा आदि रानियों ने कुछ कहा, फिर राधा एकदम, राधा अभी नहा रही है तब तक मैसेज आया कृष्ण आपसे मिलना चाहते हैं। ये बिंदु सरोवर की महिमा है, वहां स्नान किया नहीं कृष्ण मिला नहीं, कृष्ण का मैसेज आया राधा और कृष्ण मिले। राधा ने जो सिंहासन कृष्ण के लिए रखा, सत्यभामा आज ऐसे देख रही थी, ऐसा तो द्वारका में है नहीं, ये तो जिस भाव से सेवा कर रही थी। तब राधा रानी ने एक बहुत सुंदर श्लोक उन गोपियों को सुनाया कि चांद एक होता है, चकोर बहुत होते हैं, सब जान से प्रेम करते हैं, ऐसे कृष्ण एक है, हम सब प्रेम करने वाले अनेक हैं, सबको आश्वासन दे रही है। तब एक वहां एक लीला हुई है, उसको कहते हैं राधा रानी की हॉट मिल्क लीला, गर्म दूध की लीला। रात को राधा रानी को और गोपियों को एक जगह ठहराया, कृष्ण और द्वारका की रानियां रुकी हुई थी, सब रानियां राधा रानी से मिली, सब प्रेम की बातें हुई। अब रुक्मणी वहां से वापस लौट के कृष्ण के जो बना हुआ था टेंट उसमें आई, और कृष्ण का जाग रहे थे। अभी आप तक जाग क्यों रहे हो? बोला अभी तक राधा रानी सोई नहीं है तो मैं कैसे सोऊं? तो बोला मैं तो अभी उसको सुला के आई हूं। बोला नहीं, वो रात को सोने से पहले दूध पीती है फिर सोती है, आपने दूध नहीं दिया है। रुक्मणी भागती हुई गई, गरम गरम दूध किया, चांदी के सोने के कटोरे में दूध लिया और राजा रानी को दिया, देखा जाग रही थी, दूध दिया, वापस आई, आके कृष्ण को चरण दबाने लगी तो देखती है कृष्ण के चरण के ऊपर जलने के निशान पड़े हैं, बिस्तर पड़े हैं। रुक्मणी कहती है आप तो बाहर कहीं गए नहीं, ये आपके पांव कैसे जले गए, जल गए? कृष्ण कहते हैं आपने दूध राजा रानी को दिया, बहुत गर्म था, उसने पिया, उसके हृदय में मेरे चरण है, इसलिए मेरे चरण जले हैं। ये श्लोक है चेतन चरित में, राधा के हृदय में कृष्ण निवास करता है, अंदरे अंतरे राधा, राधारे अंतरे कृष्ण, राधा के अंदर भी कृष्ण है बाहर भी कृष्ण है। तो राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल रहते हैं, और गर्म दूध पिया तो चरण कृष्ण के वहां जले। आध्यात्मिक दृष्टि से ये गर्ग संहिता की लीला मिलन की है राधा कृष्ण के। लेकिन दूसरी जो लीला हम बताने जा रहे थे, श्री कृष्ण द्वारका में एक दिन मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, जगाने का प्रयास किया सबने नहीं जगे, नारद जी आए, अर्जुन खड़े हैं, उद्धव खड़ा है, बलराम जी खड़े हैं, क्यों क्या हो गया क्या हो गया? नारद ने कहा इस वक्त ये राधा भाव में है, राधा की सेपरेशन में, उसको नहीं देखेगा तो नहीं जागेगा, ही इज एक जो इस वक्त अनकॉन्शियसनेस कृष्ण की है
ये राधा भाव है, इसको अभी इसको वृंदावन ले जाना पड़ेगा, राधा रानी को देखेगा तभी ये सचेत होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? बोला इसको ले चलना पड़ेगा वृंदावन। बोला वृंदावन वाले अचानक कृष्ण को देखेंगे तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा, तो समबडी शुड गो एंड टेल देम अर्ली, बलराम जी तुम जाओ जरा। बलराम ने कहा मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं एक बार गया था और सबको मैं कह के आया मैं कृष्ण को लेके आऊंगा, कृष्ण गया नहीं, मैं वापस जाऊंगा, नोबडी विल बिलीव मी। तो मैं जाने को तैयार हूं लेकिन नोबडी विल बिलीव मी, आप जाओ उधर। बोला मैं भी एक बार गया था, कृष्ण ने भेजा था मेरे को, मैं भी को बहुत महीने वहां रहा था, मैंने गोपियों को कहा था कृष्ण को लेके आऊंगा, मैं बहुत कहा कृष्ण गया नहीं, मैं जाऊंगा, मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तब सुभद्रा ने कहा मैं जाऊंगी, मैं यशोदा मां के आंसू पोंछ लूंगी, मैं नंद बाबा को मना लूंगी, मैं गोपियों को संभाल लूंगी, मैं जाती हूं। तो अर्जुन ने रथ चलाना शुरू किया, सुभद्रा का सारथी बना। अब बलराम कहता बहन को अकेले थोड़ी मैं जाने दूंगा, मेरा रथ आगे आगे चलेगा लेकिन अंदर मैं नहीं जाऊंगा। आगे बलराम जी का रथ चला, बीच में सुभद्रा का रथ चला। अब दारूक को बुलाया, कृष्ण के सारथी को। अब 8-10 आदमियों ने कृष्ण को उठाया, एक दो सर को पकड़ा, दो चार ने हाथों को पकड़ा, दो चार कमर पकड़ा, ऐसे करके रथ के ऊपर बिठाया। आजकल जगन्नाथ को अभी भी जब मंदिर से उतार के रथ के ऊपर लाते हैं ना, तब उसको ऐसे उठा के आते हैं जैसे वो मूर्छित है, उसको लाते हैं, उसको पांडी विजय बोलते हैं, पांडी विजय। और चेतना चरित्र में तो लिखा है 40-50 दैत्य पति, 40-50 40-50 दैत्य पति, पहले तो उनके नीचे जो है रूई बांधते हैं, पहले नीचे बड़े गद्दे रखते थे, वो उठाएंगे, नीचे वाले ऐसे खींचेंगे, ऊपर वाले पीछे खींचेंगे, फिर एक कदम आगे बढ़ेगा और आएगा तो ऐसे झूलता हुआ आएगा जैसे नशे में है, मूर्छित है। अभी भी ऐसे देखना होता है, इसको देखने जाते हैं। तो कृष्ण को वहां से लाए, सबने समाचार तो दिया लेकिन कृष्ण सीधा निधि वन में गया। निधि वन में राधिका मूर्छित पड़ी है, मूर्छित बेहोश पड़ी है, ललिता आदि सखियां बैठी हैं, नाक के सामने रुई रख के देख रही है सांस ले रही है कि नहीं ले रही है। उस वक्त जो भी राधिका की सांस जटिला ननंद कुटिला अभिमन्यु जो अयन घोष, वो राधा रानी के चरणों को पकड़ के कह रहे हैं हमने कृष्ण की इच्छा पूरी करने के लिए आपको घर से जाने नहीं देते थे ताकि कृष्ण का प्रेम बढ़े, हमको माफ करना, हमने कृष्ण की आज्ञा से ये सब किया। और जो अयन घोष कहता है कि मैं कृष्ण की आज्ञा से आपकी सेवा कर रहा था लेकिन आज मैं आपसे आपके चरणों को छू के प्रणाम करता हूं। अब देख रहे हैं कि पता नहीं राधा रानी जाएगी, हमें समाप्त होने वाली है। उस वक्त कृष्ण रथ से उतरता है और राधा रानी को देखता है और देखते ही कृष्ण का ये हाल हो गया, ऐसा स्वरूप हो गया जैसे जगन्नाथ जी का। तब राधा रानी के कान में ललिता ने कहा कृष्ण आ गया। राधा रानी ने आंख खोली और तब राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, आंख से आंख मिली। ये भाव है चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ को देखते हैं तो ये भाव है। और जगन्नाथ रथ यात्रा में ये तीन रथ ऐसे चलते हैं, बलराम सुभद्रा और कृष्ण का। कहां जाते हैं? द्वारका से। जगन्नाथपुरी का मंदिर द्वारका है, कहां जाते हैं? गुंडीचा मंदिर में, वो वृंदावन है, वहां से वृंदावन जाते हैं, ये मान्यता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण राधा भाव में कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम देने के लिए आए थे। हम सब भाग्यशाली हैं कि चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं परंपरा के द्वारा, गोस्वामी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद के द्वारा हमको प्राप्त हुई है। हम अपने सौभाग्य को संभाल के रखें, कृष्ण भक्ति करके अपने जन्म को सफल करें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रसाद तैयार है? तैयार नहीं है? और बेटा तैयार नहीं है, वो इधर से बोल रहा है हरे कृष्णा। आप लोग कथा सुन रहे हैं क्या? प्रसाद नहीं बना रहे हैं? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम,
राम राम हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? तो हमने दो दिन में ये डिस्कस किया कि चेतना महाप्रभु के प्रकट होने के कारण क्या थे, बाहरंग कारण क्या थे, अंतरंग कारण क्या थे, एक्सटर्नल रीजन क्या थे, इंटरनल रीजन क्या थे। कल हम डिस्कस करेंगे महाप्रभु कैसे प्रकट हुए, फिर महाप्रभु की बाल लीलाएं होती हैं, पौंगल लीलाएं होती हैं, 5 साल से 10 साल तक बाल लीला, 5 साल तक फिर पौंगल लीला, फिर यौवन लीला जवानी, और फिर किशोर, किशोर और फिर यौवन, यहां तक लीला होती है, फिर उसके बाद मध्य संन्यास लेते हैं, उसके बाद मध्य लीला और फिर अंत लीला है। तो महाप्रभु के प्रकट्य, बाल लीलाएं, पौंगल लीलाएं, इसके ऊपर कल चर्चा करेंगे जितना हो सकेगा भगवान की इच्छा से, जैसा कृष्ण की कृपा होगी। और किसी का कोई प्रश्न है, कुछ जिज्ञासा है? महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, ये दूसरा प्रश्न। महाप्रभु आए क्यों, फिर महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, कृष्ण ने संन्यास क्यों लिया, इसके ऊपर भी बहुत बड़ी चर्चा है कि महाप्रभु संन्यास क्यों लिया। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यह। श्री कृष्ण ने बोला, मैंने कहा है, जो जैसे मेरी सेवा करता है मैं वैसे व्यवहार करता हूं, गोपी ने मेरे लिए घर बार छोड़ दिया, मैंने कब छोड़ा। कृष्ण थॉट लाइक दैट, गोपियों ने मेरे लिए घर बार छोड़ दिया, मैंने कब छोड़ा, मैं तो द्वारका में राजा बन के रहा। तो मैंने ये भगवदगीता के श्लोक को मैंने सार्थक तो नहीं किया। और फिर रासलीला में कृष्ण गोपियों को कहते, न पारे हम, आई कैन नॉट रीपे यू, न पारे हम, मैं आई कैन नॉट रीपे यू व्हाट यू हैव डन फॉर मी, जो आपने मेरे लिए किया है इसको मैं चुका नहीं सकता हूं, ऋण आपका चुका नहीं सकता हूं। अब कृष्ण ने बैठ के गोलोकुल में सोचा कि आई विल गो एंड रीपे, आई विल गो एंड रेसिप्रोकेट विद देम। सो चेतन महाप्रभु आए गोपियों का ऋण चुकाने के लिए। तो जैसे गोपियां घर बार सब सुख संपद छोड़ के कृष्ण से मिलने जा रही थी, ऐसे महाप्रभु ने सब सुख सुविधाएं को छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। और संन्यास ग्रहण करने के बाद गोपी भाव में कृष्ण कृष्ण करते रहे, जैसे गोपियां कृष्ण कृष्ण करती थी, उसी भाव को अंगीकार किया। और अंत समय में जो लास्ट अंत लीला है उसमें तो गंभीरे के अंदर बैठ के आंसू बहाते थे कृष्ण के स्मरण में महाप्रभु। और भी अन्य सुंदर लीला है कि गौरांगा महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया, सन्यासी कैसे बने। और मीरा का भी एक भजन है कि कृष्ण तुम्हारी बांसुरी कहां है, तुम्हारा मोर पंख कहां है, तू सन्यास के वेश में कैसे आ गया। बहुत सुंदर कविता है, कवियों ने इसके ऊपर लिखी है, चेतना महाप्रभु स्वयं साक्षात कृष्ण है लेकिन सन्यास क्यों लिया। राधा कृष्ण कहां विहार करते हैं, कुंजन में, कुंज, जय राधा माधव कुंज विहारी। तो कृष्ण राधा की कुंज में जाने वाले थे, राधा की कुंज में नहीं गए, लेट हो गई जाने में। तो राधा की दूती, जो उनकी दूती का मतलब जो उनका समाचार ले आती है जाती है, उसने देखा कृष्ण कहीं और है। राधा रानी को बोला, वो तो चंद्रावाली की कुंज में है, यहां नहीं है कृष्ण, यहां आपके पास नहीं आए हैं। राइटिस्ट विंग की गोपियां हैं कृष्ण की, और लेफ्टिस्ट विंग की गोपियां हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग। राइटिस्ट विंग जो है उनका कहना है कि हम कृष्ण की हैं, लेफ्टिस्ट विंग का कहना है कि कृष्ण हमारा है। राइट विंग की गोपियां क्या कहती हैं, हम कृष्ण की हैं, इसके ग्रुप की लीडर है चंद्रावली। और दूसरा लेफ्टिस्ट ग्रुप है, वो कहते हैं कृष्ण
हमारा है। इसके ग्रुप की लीडर है राधा रानी, ये लेफ्ट और राइट का अंतर ही है। हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारा है, दोनों बहुत उत्तम भाव है, लेकिन कृष्ण हमारा है ये बहुत बड़ा भाव है। आज कृष्ण नहीं आया, थोड़ी देर के बाद कृष्ण आया तो राजा रानी ने मान कर लिया, नहीं देखेंगे इसको, निकालो बाहर, अब ललिता नहीं आने दे रही है और बिचारे के लिए जाओ जाओ। अब कृष्ण को राधा से मिलने का इतना भाव है कि मुझे राधा से मिलना है और राधा से मिलने नहीं दे रही सकती, और राधा बहुत क्रोध में, मान क्रोध उनका मान कहते हैं, प्रेम का लक्षण है। जमुना के किनारे कृष्ण बैठे हुए हैं राधा के चिंतन में कैसे मिलूं। तो पूर्णमासी आती है, योग माया से क्या कृष्ण क्या बात है, बोला राधा से मिलने में मुश्किल हो रही है। बोला मुश्किल हो रही है तो एक काम करो, सन्यासी बन जाओ, बनो सन्यासी, और एक गीत आपको सुनाती है, वो गीत गाओ और उस कुंज के आगे से गीत गाते हुए जाओ। अब कृष्ण सन्यासी बने, मोरपंख उतार दिया, मांसुरी रख दी, सन्यास के कपड़े पहने और कानों फिरे भिखारी। अब कन्हैया भिखारी बना है राजा के प्रेम में, तो गोपियों ने देखा सन्यासी बाबू इधर आइए। बोला क्या है? बोला हमारी जो ब्रजेश्वरी राधा रानी है वो बड़े चिंतन में है, कृष्ण से मुलाकात नहीं हो रही है। बोला मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी हूं, मैं अभी बता सकता हूं कि क्या समस्या है। तो सन्यासी को अंदर लाए कुंज में, बीच में पर्दा रखा, सन्यासी यहां बैठा है। बोला आप देखो। बोला नहीं, हम सन्यासी हैं, हमसे काहे का पर्दा, हम सन्यासी हैं, हमसे काहे का पर्दा, हमारे सामने आएगी तब हम देखेंगे, तो हम तो केवल चेहरा पढ़ते हैं, हाथ बात नहीं देखते, हाथ ऐसे निकाला दिखाई, बोला हाथ नहीं देखते, हम तो ललाट को पढ़ेंगे, फेस रीडिंग के एक्सपर्ट है। अब जैसे ही राधा रानी के सामने सन्यासी को कृष्ण बैठा और पर्दा हटा, तो कृष्ण का असली रूप प्रकट हो गया सन्यासी रूप से, और राधा रानी एकदम उनका मान समाप्त हो गया और फिर मिलन हो गया। तो ये तो एक्टिंग ड्रामा था कृष्ण लीला में, लेकिन वही सन्यासी का रूप चेतना महाप्रभु ने धारण किया राधा के भाव में, और गली गली में कृष्ण को ढूंढने का जो है एक लीला की। और हमको इससे सीखना क्या है कि हम कब से कृष्ण से बिछड़े हुए, आई नंद तनुज किंकरम पतितम मां विषमे भवाम्बुदो, किसी कारण से श्री कृष्ण हम आपके चरणों के किंकर हैं, दास हैं, दासों के दास हैं, आपसे जुदा हो गए हैं, कब से, अब कब आपसे मुलाकात होगी। रोज हम भगवान को याद करते हैं, कब हमको सेवा मिलेगी, सेवा तब में मुलाकात कब होगी, तो ये भाव हमारे अंदर कब पैदा होगा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है, वेन विल वी वीप फॉर कृष्ण, वेन वी विल क्राई फॉर कृष्ण, नयनम 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 गदगद नयनम गदगद अश्रु, क्या है क्या है, नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा, पुलक निचितम वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। वो दिन कब आएगा जब हम भगवान श्री कृष्ण के नाम उच्चारण करेंगे, आंखों से अश्रु धाराएं बहेंगी, गला रुझ जाएगा, शरीर के ऊपर पुलकावली हो जाएगी और आनंद में नृत्य करेंगे, वो दिन कब आएगा। ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। तो हम अपने चैंटिंग को इतना परफेक्ट करें कि हमारे कृष्ण का जो प्रेम है, ये जो हम कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, कब मिलेगा। बहु जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, बहुत जन्मों से बिछड़े हैं कृष्ण से, कैसे कृष्ण, ये फीलिंग हमारी कब पैदा होगी। ये महाप्रभु इसी के लिए आए थे कि कृष्ण का प्रेम, उसकी जुदाई जो है उसमें, उसके लिए हम कैसे तड़पे उसको प्राप्त करने के लिए। वह वलो गोस्वामी क्या वेवल होते थे, वेवल देवर भटकते थे, आए कहाँ है कालिंदी कुले गोवर्धन तले, कहाँ गोवर्धन के पास हो, जमुना के किनारे हो, कहाँ हो कृष्ण, कृष्ण के लिए वेवल थे, वेवल के मतलब दे वर कंप्लीटली एंशियस टू सी कृष्ण एंड लुक फॉर कृष्ण। तो ऐसे हमारा जब कब ऐसा भाव आएगा कि कृष्ण प्राप्ति के लिए होना चाहिए, कृष्ण के विरह में होना चाहिए, ये चेतना महाप्रभु के भाव है। शिक्षा अष्टकम हम पढ़ते तो रोज है मंदिर में, और उसमें ये भी पढ़ते हैं कि पहले हमारा हृदय साफ होना चाहिए हरि नाम से, फिर कहते हैं न धनम न जन्म, कहते हैं लेकिन चाहते हैं मोर धनम मोर धनम मोर धनम, कहते हैं न धनम और मांगते हैं मोर धनम, बिल्कुल हमारा उद्देश्य ही और हो जाता है। नाम जपना है, आंखों में आंसू आएंगे, ये सब जो भाव है शिक्षा अष्ट के, ये भक्त की प्रोग्रेस, एक श्लोक से लेकर आठ श्लोक तक प्रोग्रेस, और ये जप के द्वारा होनी है। तो हम कौन से श्लोक के ऊपर खड़े हैं, पहले श्लोक के ऊपर खड़े हैं, चेतो दर्पण माजना, सफाई करने के अंदर लगे हुए हैं, सफाई अभी हो रही है लेकिन वो आठवें श्लोक तक जाना है, ये महाप्रभु की शिक्षा है। सफाई होगी तब हमारा मन के अंदर बाकी दूसरे भाव आएंगे। तो ये जप हमारा पवित्र हमको करने के लिए है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए है, तो इसको ठीक तरह से करना चाहिए। ये चेतना महाप्रभु के प्रकट का मुख्य उद्देश्य है, कृष्ण के लिए ब्रह हृदय में, ब्रह मतलब ब्रह, ब्रह की पीड़ा, सेपरेशन का जो लॉन्गिंग फॉर कृष्ण है ये पैदा करनी, और कृष्ण के लिए लॉन्गिंग पैदा करने के लिए कृष्ण प्रसाद के लिए लॉन्गिंग होनी चाहिए। अब प्रसाद तैयार हो रहा है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।